महसूस करते रहते हैं, उसका उपाय क्या है? स्वामी नारायण ने दो उपाय बताए। एक उन्होंने कहा हरि आश्रय और दूसरा विश्राम। हरि आश्रय ईश्वर विश्वास की दृष्टि से अचूक उपाय है वास्तविक जीवन की अभिव्यक्ति के लिए, और विश्राम सभी साधकों के लिए समान रूप से अनिवार्य है। हरि आश्रय और विश्राम ये दोनों ही उपाय किसी विशेष संप्रदाय के लिए, मजहब मत पंथ के लिए ऐसा नहीं है। जितने भी साधक हैं जिनको की अविनाशी जीवन की मांग है, ये सबके लिए समान रूप से उपयोगी उपाय हैं। और वस्तुतः बात तो ऐसी ही है कि जहां थोड़ा भी श्रम है, स्थूल अथवा सूक्ष्म ऐसा भी हो, जहां थोड़ा भी श्रम है तो श्रम के रहते हुए शरीरों से असंग होना संभव नहीं। शरीरों से असंग होने बिना शरीरों से तादात्म्य टूटना संभव नहीं। जहां थोड़ा भी श्रम है वहां अशरीरी जीवन में प्रवेश पाना संभव नहीं। तो श्रम करो विश्राम पाने के लिए, और विश्राम का संपादन होगा तो वास्तविक जीवन मिलेगा, ऐसा एक क्रम बना। अब ये हिंदुओं के लिए अनिवार्य है कि गैर हिंदुओं के लिए अनिवार्य है कि किसी विशेष मत पंथ के लिए, ऐसी बात है ही नहीं। शरीर विज्ञान, मनोविज्ञान और दार्शनिक सत्य तथा आस्तिकता का सत्य मानव मात्र के लिए समान रूप से लागू होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि जो अपने को सनातन धर्म के मानने वाले कहते हैं उनको उनके लिए विश्राम अपेक्षित है, और जो लोग अपने को आर्य समाजी कहते हैं उनका विकास बिना विश्राम के हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। शब्दों का प्रयोग चाहे जैसे भी किया जाए और इस बात का प्रकाशन चाहे जिस शैली में किया जाए, लेकिन साधकों के साधना मुक्त जीवन का यह एक ऐसा अपरिहार्य तत्व है कि जिसको छोड़ करके कोई भी अशरीरी जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता। एक बात हो गई। अब दूसरी बात इस ढंग से सोचिए कि वह विश्राम आपको अपनी इस वर्तमान दशा में आवश्यक मालूम होता है कि नहीं। जी होता है। परिश्रम करके हम सब लोग थकित होते हैं, मन में किसी प्रकार की समस्या खड़ी हो जाए और उसका समाधान नहीं सूझे तो हम लोग थकते हैं। इच्छाओं की उत्पत्ति हो गई और पूर्ति के इंतजाम में लग गए और विधि के विधान से संकल्प पूरा हो गया तो उसके सुख भोग में आदमी थकता है। अब ये सब साइकोलॉजी है, बहुत ही स्थूल स्तर की बात है। तो संकल्प पूर्ति के सुख में भी थकता है। सुखभोग की प्रवृत्ति मनुष्य में शक्तिहीनता लाती है, यह वैज्ञानिक सत्य है। किसी प्रकार के सुखभोग की प्रवृत्ति, ऐसे जैसे गाना अच्छा लगता हो, नाचना अच्छा लगता हो, किसी विशेष प्रकार का भोजन बड़ा स्वादिष्ट लगता हो, किसी विशेष स्थान में घूमना घामना खेलना बड़ा अच्छा लगता हो, तो इन सब बातों को लगातार करते जाओ तो ताकत बढ़ेगी कि थकान आएगी। थकान आसान आएगी। बिल्कुल सच्ची बात है, इसके लिए ग्रंथ की ग्रंथ का प्रमाण खोजने की जरूरत नहीं है और किसी से समर्थन लेने की जरूरत नहीं है। यह सब हमारे आपके जीवन की अपनी जानी हुई बात है कि किसी प्रकार की भोग प्रवृत्ति में लग जाओ तो शक्तिहीनता आती है। भोग प्रवृत्ति सुखद लगती है और उसके परिणाम में जब शक्तिहीनता आती है तब बुरा लगता है, तो अच्छा नहीं लगता। तो ये जानी हुई बात हो गई कि भोग प्रवृत्ति में शक्तिहीनता है और मनुष्य को शक्तिहीनता पसंद नहीं है। इसलिए जो अपने को साधक करता है और जिसको पूर्ण विश्राम चाहिए, परम शांति चाहिए, तो उसका पहला ही कदम होगा कि वो अपने को किसी प्रकार की भोग प्रवृत्ति के द्वारा शक्तिहीन न बनावे। तो एक बात ये हो गई। अब दूसरी तरफ से सोचो वो क्या है कि भोग प्रवृत्ति की ओर से हम लोगों ने अपने को संयत कर लिया, थोड़ा नियमन कर लिया कि नहीं नहीं शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जो आवश्यक है, स्वास्थ्यकर पदार्थ है और कम से कम अल्प से अल्प मात्रा में जितना जरूरी है उतना ही लेंगे, स्वाद के सुख के लिए भोजन के पीछे नहीं पड़ेंगे, नियमन कर लिया आपने अपने ऊपर, तो उस हानि से बच गए। मन बहलाव के फेर में पड़ करके शक्तिहीन नहीं बनेंगे, थकान नहीं आने देंगे, तो उससे बच गए आप। बहुत छोटी छोटी बातों में उत्पादक भाई बहनों को इस बात पर दृष्टि रखनी चाहिए कि किसी तरह से भोग प्रवृत्ति में शक्तियों का ह्रास न हो। तो उसमें से जब जब शक्ति बची रहेगी तब उससे आपका बड़ा उपकार होगा। क्या उपकार होगा कि जब भोग में से शक्ति बच जाएगी तो कर्तव्य पालन में लग जाएगी और कर्तव्य पालन में लग जाएगी तो आप वीरराग पुरुष होने के अधिकारी हो जाएंगे। सुख के फेर में पड़ा हुआ व्यक्ति कर्तव्यनिष्ठ नहीं होता है और कर्तव्यनिष्ठ हुए बिना वीरराग होने की सामर्थ्य नहीं आती है और वो सामर्थ्य नहीं आई तो आगे फिर बढ़ना संभव ही नहीं है। तो मानव सेवा संघ की चर्चा में सिद्ध जीवन की चर्चा बहुत कम है क्योंकि महाराज जी ने उसको चर्चा का विषय माना नहीं, वो तो अनुभव करने का विषय हो गया। और हमारी आपकी जो वर्तमान दशा है, जहां से हमें कदम उठाना है, जहां से हमें आगे बढ़ना है, वहां से चर्चा आरंभ होती है। तो पहली बात हो गई कि भोग प्रवृत्ति के द्वारा अपने को शक्तिहीन नहीं बनाना है, उसे नियमित कर लो, नियमित कर लो, बच जाओ उससे, तब फिर हम उसके आगे हम लोग बढ़ सकेंगे। और वो क्या है कि सुख भोग की प्रवृत्ति का जो थकान है वो तो स्थूल स्तर पर होता है शरीरों के, और उसको आसानी से मिटाया भी जा सकता है, लेकिन सुख भोग का लालच जो अति सूक्ष्म है भीतर, तो उसको भी निकाल देना चाहिए, क्योंकि वो रहेगा तो उसके भार से फिर वृत्तियों को एक केंद्र पर केंद्रित करना संभव नहीं होगा। जीवनी शक्ति की कितनी धाराएं बन जाती हैं विविध रूपों में बंट करके, अलग अलग केंद्रों से जाकर के वृत्ति जुट जाती है और धीरे 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 करके शक्तियों का ह्रास हो जाता है। तो वो भीतर से उसकी पसंदगी भी हटानी चाहिए। भीतर से उसकी पसंदगी भी हटा दी गई तब क्या करेंगे, तो क्या भूख लगने पर खाएंगे नहीं, चुनी लगाने पर सोएंगे नहीं, ऐसा नहीं है। उसका अर्थ ये होता है कि इस प्रवृत्ति को तुम जीवन मत मानो, इसकी चाह अपने भीतर मत रखो, इसके रोग को जीवन मत मानो। शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर कोई हितकर और स्वास्थ्यकर वस्तु खाने के लिए मिल जाए तो मुंह में विश्वास थोड़ी लगेगा, सो नहीं होगा, लेकिन उसमें उसको जीवन बुद्धि से मत स्वीकार करो। ऐसा मत सोचो कि आहा बड़ा स्वाद आया, अब तो यही हमको रोज मिलना ही चाहिए और ऐसे स्वादिष्ट वस्तु को खाना ही जीवन है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। शरीर की सेवा के लिए जो जो सहज से प्राप्त हो गया उसकी आहुति डाल दी शरीर में और फिर उससे तुम निश्चिंत हो जाओ। तो ये उदाहरण मैं अपने लोगों के सामने रख रही हूँ कि कहीं ऐसा मत सोचने लगिएगा कि भाई हर सुखद प्रवृत्ति से बंधन में बनता है आदमी। भूख लगने पर अगर भोजन करो, अच्छी भूख लगी हो, स्वास्थ्य अच्छा हो, तो बहुत सादी रोटी खाने में भी बड़ा मीठा लगता है, तो मीठा तो लगेगा ही, हर ग्रास बहुत मीठा मीठा लगता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ज्ञान बंद हो गया कि साधना बंद हो गई। इसका मतलब ये है कि स्वास्थ्य अच्छा है, वस्तु अच्छी है और ठीक है, वस्तु को वस्तु के हवाले कर दो और तुम अपनी सजगता बनाए रखो। तो प्रत्येक दिन के दैनिक जीवन में शरीर की सेवा का जो सामान्य व्यवहार है उसमें कोई संदेह करके उलझन में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन बहुत अच्छी तरह से इस बात को जानना चाहिए कि जो प्रवृत्ति हमारी चल रही है उसमें शरीर की सेवा की दृष्टि कितनी है और सुख की दृष्टि कितनी है। तो सुख बुद्धि उसमें न रख करके सेवा बुद्धि से काम किया जाएगा तो बंधन नहीं बनेगा और राग नहीं बनेगा। तो व्यवहार की बात भी हो गई, अब उसके आगे अपने को तो श्रम रहित होना है, अपने को विश्राम पाना है। और स्वाद के संबंध में भी मैंने अच्छे संतों के निकट कर करके भी देखा है और सुना भी है और मैं उसको सही भी मानती हूँ कि जब तक वास्तविक जीवन का अनुभव अपने को नहीं हुआ है, जब तक अपनी सारी वृत्ति उस रस से सरस होकर जुटनी गई है, तभी तक शरीरों के स्तर पर स्वाद बेस्वाद खट्टा मीठा नमक और फीका इन सब बातों का पता चलता है। और नहीं तो स्वरस आदमी को इतना आकर्षक लगता है, इतना आकर्षक लगता है कि उस रस में छके हुए को पता ही नहीं चलता है कि जो जो मुख में जा रहा है, जो रस बन रहा है वो कैसा है, खट्टा है कि मीठा है कि फीका है कि कैसा है, कुछ नहीं पता चलता है, ऐसा भी होता है। और ऐसे संत को भी देखा है कि जिनकी वृत्ति अंतर्मुख हो गई, अपने उद्गम से जुट गई होगी, ये तो मेरा अनुमान है, और बाहर से जो देखने में आया वो ये देखने में आया कि उस आनंद में वो इतने मस्त रहने लगे कि कई कई दिनों तक उनको आहार दिया नहीं जा सकता था। खूब पैर सहलाया जा रहा है, खूब प्रणव का उच्चारण किया जा रहा है कि इनका किसी तरह से अंतर की वृत्ति बहिर्मुखी हो तो भोजन में कुछ लेकर के उनके मुख में ग्रास डाला जाए, लेकिन बहुत बहुत उपाय करने पर भी कई कई दिन तक समाधि उनकी टूटती ही नहीं थी। योगी थे, अभी हाल की बात है, बहुत पुरानी बात नहीं है, छोटा में थे, उनका आश्रम तो भी है लेकिन अब उनका शरीर नहीं रहा। तो ऐसा भी होता है, ऐसे सोच करके आप देखिएगा तो अपने जीवन की गरीबी अपने को पता चल जाएगी, उसकी गरीबी की। क्या होता है कि आप बैठे हैं और भीतर से फुर ना उठे कि चल के जरा घूम के आए, कि भोजन मिला उसको ग्रहण कर रहे हैं और फिर कुछ मन पसंद खाद्य पदार्थों की याद आ रही है कि इसमें जरा ऐसा और होता तो अच्छा होता, इतना तो ठीक है, इसमें और इतना मिलता तो अच्छा होता, तो बैठे हैं तो कहीं जाने की याद आ रहे, कुछ खा रहे हैं तो कुछ और वस्तुओं की स्वाद याद आ रहे, कुछ कर रहे हैं तो कुछ और करने की याद आ रहे। अगर इस तरह की दशा अपने भीतर से होती हो तो साधक होने के नाते खाना और घूमना और बोलना वो सब छोड़ के अकेले बैठ करके अपनी ओर देखना आरंभ करिए कि भाई क्या बात है कि हम जो खा रहे थे उससे भिन्न वस्तुओं की चाह पैदा हुई, जहाँ बैठे थे वहाँ से कहीं और जाने का संकल्प पैदा हो गया, जो कर रहे थे उसको छोड़ करके कुछ और करने की बात याद आ गई, क्या कारण है। ऐसा करके अगर अपने भीतर आप खोजेंगे तो आपको पता चलेगा कि बैठे हैं तो वो बैठने में आपको वो सरसता नहीं मिल रही है कि संसार और शरीर से आपको छुटा दे। खा रहे हैं तो जो भी किया है शरीर की सेवा के लिए प्रयास है, और कुछ खास बात है नहीं, और उसके बिना कोई अभाव और निरस्ता नहीं लग रही है। ऐसा कब होता है तो लक्ष्य पर दृष्टि रहे तब होता है, प्रभु के मंगलमय विधान में निष्ठा रहे तब होता है, आदमी स्वरस में डूबा रहे तब होता है, प्रभु प्रेम की प्रतीक्षा में डूबा रहे, प्रबल उत्कंठा में लगा रहे तब होता है। तो न दिन का पता है, न रात का पता है, न स्वार्थ का पता है, न कुछ करने का है, न कुछ नहीं करने का है। ये बातें साधक के जीवन में बहुत स्वाभाविक होनी चाहिए, और अपनी वर्तमान दशा का पता चलना हर साधक के लिए बहुत जरूरी बात है। अगर मन उचट गया, अब यहाँ रहते रहते अच्छा नहीं लग रहा है, कहीं और चलो, तो पूछो कि जब से जन्मे तब से कहाँ कहाँ गए, कहाँ कितना कितना घूमा, कितना भ्रमण किया, कितनी जगह बदले, कितनी परिस्थिति बदले, अभी तक अगर संतोष नहीं हुआ तो और एक नई परिस्थिति नई जगह बदल देने से संतोष हो जाएगा जी, नहीं होगा। इसलिए उस संकल्प को ना महत्व देना चाहिए, ना उसका समर्थन करना चाहिए, ना उसके अनुसार प्रवृत्ति करनी चाहिए, खोज करनी चाहिए अपनी कि भाई विश्राम जहाँ मिल सकता है वह तो अपने भीतर ही है, श्रम कहाँ है उससे विमुख हो करके पराश्रय और पराधीनता में पर की ओर दौड़ने में श्रम है, और स्व की ओर सन्मुख होने में विश्राम है, उससे विमुख होने में श्रम है और अभाव है। तो ऐसे अपनी दशा को देख देख करके अपने को समझाते चले जाओ तो अशांत होने के कारण सब मिटते चले जाएंगे। खास बात होती है, अब अपनी दशा क्या है, तो अगर कोई संकल्प उठा और वो अशुभ नहीं है, किसी का नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है, और उसकी पूर्ति की परिस्थिति है, तो संकल्प निवृत्ति की शांति और विश्राम पर दृष्टि नहीं जाते। अगर संकल्प पूर्ति की संभावना है तो संकल्प पूर्ति के सुख पर दृष्टि चली जाती है। करना क्या चाहिए कि संकल्प निवृत्ति पर दृष्टि रखनी चाहिए, जहां की अपने को विश्राम मिलेगा, विश्राम में जीवन है। तो इस बात पर ध्यान रखना चाहिए, और फिर सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है, बचपन से खटकती रहती थी पहले भी, लेकिन उसको मिटाने का कोई उपाय नहीं मालूम था, क्या होता है कि अनुकूल परिस्थितियों में भी हर व्यक्ति के भीतर एक अभाव खटकता रहता है। तो सामर्थ्यवान क्या करते हैं, जिनके पास पैसे हैं और जिनके पास शरीर में बल है और जिनकी परिस्थितियां अनुकूल हैं, तो वे लोग क्या करते हैं कि संकल्प भीतर भीतर से जब अभाव लगता है तो बाहर बाहर से मन बहलाव का प्रोग्राम बनाते रहते हैं। और बड़ी व्यस्तता मैंने देखी है, बड़ा बड़ा उपाय करते रहते हैं, बहुत जो जो की तैयारियां होती रहती हैं, अब यहाँ जाएंगे अब वहाँ जाएंगे अब ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो भीतर भीतर हमको इतना दुख लगता है। मैं कहती हूँ हाय रे मनुष्य, तुझे तुझे जो चाहिए वो अपने भीतर ही में है और उस पर दृष्टि न रखने के कारण कहाँ कहाँ जिंदगी को खतरे में डाल करके भी आदमी मन बहलाव करता करता है। तो जो जो रस स्वरूप है, जो जीवन स्वरूप है, उससे विमुख रहने के कारण से व्यक्ति के भीतर रह रह करके अभाव सताता है। और जब जब अभाव सताता है तो प्रतिकूल परिस्थिति में पड़ा हुआ व्यक्ति झक मारता है और रोता है, और अनुकूल परिस्थिति में पड़ा हुआ व्यक्ति विपरीत दिशा में दौड़ता है। आज तक की जिंदगी हम लोगों की जो बीती है उसमें आप सचमुच बताइएगा कि सुखद घड़ियों को देखा है कि नहीं जी? देखा है। तो सुखद घड़ियों को देखने के बाद भी अब मैं सब प्रकार से पूर्ण हूँ, कृतकृत्य हो गया, कुछ नहीं चाहिए, ऐसा लगता है क्या? नहीं लगता है। बड़ी दयनीय दशा होती है। क्या होता है कि सुखद घड़ियों का के जो चांसेस हैं वो जैसे जैसे आप उम्र की बढ़ाव में चले जाइए, एडवांस एज में पहुंचने लगिए, तो सुखद घड़ियों के चांसेस कम हो गए, शक्ति कम हो गई, समाज में स्थान घट गया, परिवार में अब नई पीढ़ी के लोगों ने सब कारोबार अपने हाथ में ले लिया, अब किसी को आपसे सलाह लेने की जरूरत भी नहीं रही, और आप जबरदस्ती बेटे को और पोते को बुला बुला के पूछ रहे हैं, अरे भैया तुम्हारी सर्विस कैसी चल रही है, तुम्हारी दुकान कैसी चल रही है, तुम्हारा कारोबार कैसा चल रहा है, तो बाबू जी कभी फुर्सत होगी तो बताएंगे, अभी तो आप चुपचाप रहिए, शांत रहिए, राम राम कीजिए। बाबू जी अब आपको क्या करना है, अब राम राम कीजिए। माता जी अब आपसे कुछ काम होता नहीं है, अब आप बैठिए, माला जपिए, भगवान का नाम लीजिए, अब हम लोगों को हमारे ढंग से काम करने दीजिए। हाय मनुष्य कितना गरीब हो गया, 50 वर्ष का था तो कुछ जिंदगी मालूम होती थी, 60 वर्ष का हुआ तो उससे कम हो गया, 70-80 वर्ष का हो गया तो बस जिंदगी कुछ रही ही नहीं। तो धरती पर जो मैंने धरती माता को इतना भार दिया कि उन्होंने 80 वर्ष तक मेरे भार को अपने पर संभाला, तो उसका प्रतिदान क्या दिया मैंने? कुछ नहीं। नादान इतने छोटे से नन्हे से नंद धर्म इस धरती पर गिरे थे और अब फिर इस धरती पर उसी असहाय अवस्था में गिर करके प्राण त्यागने के लिए तैयार हैं हम लोग। कितनी दुख की बात है सोचो तो, मनुष्य के जीवन का फल क्या निकला? तो कुछ नहीं निकला। इसलिए आपके भीतर जब अभाव लगे तो सावधान हुई, मुझको तो बड़ी मदद मिली। जब भीतर से सूना कम लगे तो मैं परमात्मा की आलोचना करने लग जाऊं, सबसे पूछती रहूं, ऐसे करते करते संत के पास पहुंच गई जिन्होंने हर प्रकार से मेरे सब संदेहों का निवारण कर दिया। तो मनुष्य के भीतर जो जो अभाव सताता है वो न विधान का दोष है न परमात्मा का दोष है, और वो कोई अस्थाई बीमारी भी नहीं है कि जिसका नाश हो, वो तो इस बात को याद दिलाने के लिए है कि सचमुच जो तुम्हारा स्वरूप है उससे तुम बिछुड़ गए हो, सचमुच जो तुम्हारा अपना प्रीतम है उससे तुम बिछड़ गए हो, सचमुच जो तुम जिस रस के अधिकारी हो उससे तुम विमुख हो गए हो। तो हम अपने अपने स्वरूप से विमुख हो गए हैं, इस बात को याद दिलाने के लिए वो अभाव सताता है, भीतर भीतर कमी महसूस होती है। फिर अब करें क्या? तो भीतर से जब अभाव लगे तो बाहर से मन बहलाव की चेष्टा मत कीजिए, ये एक खास बात है, इससे मदद मिलेगी। अब साइकोलॉजिस्ट होने के नाते अगर अगर पूछा जाए तो साइकोलॉजी तो पूरी जिंदगी की कथा बता ही नहीं सकती, ऊपरी ऊपरी बातों को थोड़ा बहुत परिचय मिलता है, तो वो कहेंगे कि अरे नहीं नहीं ऐसा मत करो भाई, नीरसता नीरसता में जिंदगी बिताओगे तो मानसिक विकृति पैदा हो जाएगी, इसलिए मन को प्रसन्न करने का कुछ कुछ इंतजाम रखो। छात्रावास में मैं रहती थी, जिस कमरे में रहती थी वो कमरे कमरों की दीवारें ऐसी ही सुनी रहती थी, तो कोई कोई सखी सहेली हमारी शिक्षिका भीतर भीतर आने कमरे में कभी तो कहीं कैसा सुना सुना कमरा रखती है तुम, तो देखी दीवारों में अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर चित्र लटका लो तो अच्छा लगेगा, सुना सुना कमरा रखती हूँ चित्र भी नहीं लटकाती हो। ध्यान नहीं देती थी मैं उनको, कुछ उत्तर नहीं देती थी, जब वो लोग चली जाए तो मैं अकेले सुने कमरे में बंद करके बैठती तो मैं कहती कि अच्छा तो उस पर चाट करके प्यास बुझा लोगी, दीवारों में चित्र लटका करके चित्र को सरस कर लोगी, तो उत्तर मिलता नहीं तो नहीं तो नहीं लटकाएंगे तो चित्र नहीं लगाएंगे, ऐसे ही रहेगा। तो बाहर का जो मन बदलाव है उसमें व्यक्ति भीतर के रस पर से हट जाता है, ध्यान नहीं जाता है। इसलिए मैं तो ऐसा निवेदन करती हूँ कि साधक भाई बहनों को जब जब कभी भीतर से सुना सुना सा लगे तो उस घड़ी का बहुत अच्छा उपयोग करना चाहिए, अपने में खूब जागृति और चेतना लाना चाहिए कि अरे भाई ये निरस्ता तो मुझे रस स्वरूप मेरे परम प्रेमास्पद प्रभु की याद दिला रही है। तो अगर अगर मूल बात पर दृष्टि चली गई तो बाहर की दौड़ धूप खत्म हो जाएगी, प्रवृत्ति का संकल्प नहीं रह जाएगा, तो आपको शांति मिलेगी विश्राम मिलेगा। और अगर मन बहलाव पर दृष्टि चली गई तो शांत अगर पाएंगे कि प्रवृत्ति में डूब जाएंगे जी, बिना प्रवृत्ति के तो मन बहलाव तो होगा नहीं, पिक्चर देखने चलो कि बगीचे में घूमने चलो कि चाट खाने चलो कि होटल के चक्कर लगाओ, तो बिना प्रवृत्ति के मन बहलाव तो हो ही नहीं सकता है। तो गाना गाओ कि नाचो कि कथा कहानी कहो कि पत्ते खेलो कि क्या करो कि क्या करो, कहाँ से कहाँ चला जाता है आदमी। आनंद स्वरूप जो उसके भीतर ही विद्यमान है उसके बिछुड़ करके कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है आदमी मन बहलाव के फेर में। जो करना चाहिए सो भी करे, जो नहीं करना चाहिए सो भी करे, और उसके दुष्परिणामों में फंस करके अधिक अधिक दुख खरीदे। तो साधक वर्ग को ऐसा नहीं करना चाहिए, साधक वर्ग को निःसंकल्प करके शांति में रहने का स्वभाव बनाना चाहिए। तो भीतर भीतर से कमी महसूस हो, अभाव महसूस हो, नीरसता सतावे तो तुरंत अकेले कमरा बंद करके बैठ जाओ और याद करो कि अच्छा ये जो बात है ऐसा जो लग रहा है ये तो इसलिए कि हम अपने रस स्रोत से विमुख हो गए। तो सचमुच परमात्मा से अपना नित्य संबंध है, उस रस स्वरूप से हम सदा के लिए जुटे हुए हैं, इस बात को भूल जाने से उनकी विस्मृति के कारण से भीतर भीतर नीरसता आती है। ऐसा होता है जिसके पास पैसा नहीं है वो सोचता है कि धन होता तो नीरसता नहीं होती, तो जिसके पास धन होता है उसको दूसरा कुछ कारण सोचता है, वो हो गया तो कुछ और कारण सोचता है, तो ये तो असाधारण काल की बात है। और साधक और सत्संगी की बात क्या है कि जब कभी भीतर से अभाव लगे तो प्रभु का दिया हुआ शुभ संवाद समझना चाहिए कि अच्छा हम तो भूल गए थे, हमारे प्यारे को हमारी याद आ रही है और उनसे बिछोड़ने का उनके विमुख होने का ये संदेश आया है, तो शांत हो जाओ एकांत में बैठ जाओ, उन्हीं से कहो। एक बार स्वामी जी महाराज को मैंने सुनाया बहुत दुखद दशा थी, दशा ऐसी थी कि इस दृश्य जगत में जीवन को सरस बनाने के लायक कोई आधार मुझ नहीं देता था, सब 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 निशान निशान दिखाई देता था, तो इधर कोई सहारा है नहीं। और जो असली बात है उसका पता नहीं, मुझको मालूम भी नहीं था कि असली बात क्या है जीवन के लिए। तो असली बात जो है, जो जो अपना अपना आधार जीवन का है, जो अपना उद्गम है, जो अपना परम हितैषी परम आत्मीय चिंतक है, वो अनंत परमावान है, इन बातों का कुछ पता भी नहीं था। और जो दिखाई दे रहा था उसमें कहीं कुछ साग लगे ही नहीं, तो भीतर से बहुत सुना सुना लगे कि क्या करें कैसे करें। और क्रोध आवे तो सब परमात्मा के विधान पर, कैसे सृष्टि बनाई, कैसे क्या किया, कुछ गड़बड़ कहीं है, नहीं तो हमको खुशी क्यों नहीं होती, अच्छा क्यों नहीं लगता। तो गड़बड़ अपने में था, उसको मालूम ही नहीं है, तो जिसने हमको बनाया उसने कुछ गड़बड़ किया है ऐसा लगता। स्वामी जी महाराज के पास जब हम आए और उनको बताया, तो धीरे 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 करके उन्होंने हमारी सब शंकाओं को मिटाया और उसके बाद परमात्मा का परिचय दिलाया और बहुत प्रकार की आशाजनक आश्वासन की बातें बताई। उन्होंने कहा ठीक है, तो वहां भी वो उन्हीं की जबरदस्ती, जैसे जैसे दुनिया में सारी आपत्ति विपत्ति से लड़के संघर्ष करके उनसे टक्कर लेकर अपने को पार करने को सोचा था, ऐसे उधर भी सोचूं कि अच्छा ठीक है समझ महाराज कहते हैं तो ऐसा करो। तो ऐसा करने चलो तो भीतर में इतनी दुर्बलता, अपने अंदर में ऐसा घना अंधकार, हृदय की शुष्कता में रस का कहीं नाम नहीं, तो आप क्या करें। एक एक स्वाभिमानी बनावट तो उनको देना है, प्रेम का भाव उनके प्रति अर्पित करना है, और सारे जीवन में खोज ढूंढ करके देख लो तो कहीं भी इतना स्थान भाव का पता चले न रस का पता चले। तो हमने कहा कि अब ये चांस भी गया, अब क्या करें। तो स्वामी जी महाराज से मैंने बैठ करके बहुत बढ़िया से अच्छा ललित साहित्यिक भाषा में सब सुनाया। मैंने कहा महाराज पता नहीं कब से क्या हो गया, खाल सजाकर देव मंदिर के द्वार पर खड़ी हूँ मैं, कृष्णा की अग्नि से अर्घ के पात्र में जल सूख गया। स्वामी महाराज क्या लेकर अंदर जाऊं, पुष्प की पंखुड़ियां मुरझा गई महाराज, कुछ बचा नहीं, उनको क्या देने के लिए अंदर जाऊं। अंतर्दृष्टि रखने वाले संत मेरी व्यथा को समझ गए, मेरी पीड़ा उनके भीतर समा गई, कहने लगे कोई बात नहीं, कह दो उन्हीं से कह दो, तुम्हारी पूजा की अभिलाषा तो है, परंतु हे परम उदार मेरे पास सामग्री नहीं। तो लाली तुम विश्वास करो, तुम्हारा घट गया तो क्या हुआ, उनका भी घट गया, उनके पास भी कमी है क्या, तो बात तो नहीं है। तो उनको मानव हृदय का प्रेम इतना पसंद है, इतना पसंद है कि तुम्हारे भीतर का रस सूख गया तो वे अपना ही अनंत रस तुम्हारे में भर देंगे, और फिर तुम जब उनको अर्पण करोगी तो वे अच्छा मानेंगे, आनंदित होंगे, स्वयं तुमको आनंदित करेंगे और बड़ा उपकार मानते हैं। तुम जो पियो सो को न पियो हे अपने आप से कह रहे हैं, सखियों से कह रहे हैं, प्रेमी जनों से कह रहे हैं, तो दिया हुआ उनका ही है और उन्हीं के प्रति अर्पित है और वो जानते हैं कि मेरा दिया हुआ है, फिर भी उपकार मानते हैं, आनंदित होते हैं और बहुत ही उपकृत होकर के देने वाले भक्त को अपना प्रेमास पद बनाते हैं। बड़ा है आनंद, जनकपुरी की चर्चा में भी ये बात आती है और ब्रज की चर्चा में भी ये बात आती है। दोनों ही समय जब वे हमारे समान होकर हमारे बीच में पधारे तो उन्होंने अपने इस स्वभाव का बड़ा बढ़िया परिचय दिया। जनकपुरी से विदाई के दिन नजदीक आ रहे हैं, रह रहकर समाचार आ रहा है चक्रवर्ती महाराज दशरथ के यहाँ से कि बहुत दिन हो गए, अब विदा दीजिए, अब हम लोग जाएंगे। तो सखी सहेलियाँ नगर की सब लड़कियाँ भौजाइयाँ किशोरिनी की सब से सब घेर के बैठती और कहती, हे लालन आप चले जाएंगे तो आपको देखे बिना तो हम रह नहीं सकते। तो कोई कहती कि आप जाइए मत, आप यहीं रहिए, कोई कहती कि आप जाइए तो हमें लिए जाइए। तो ये तो सबको मालूम था कि मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो एक स्त्री के अलावे फिर दूसरा और विवाह नहीं कर सकते हैं, फिर भी प्रेम के प्रभाव में वे लोग यही करती कि हम दासी होकर रहेंगी, हम महल की छोटी छोटी टहल बजाएंगी, लेकिन ये दालन हम लोगों को छोड़ कर मत जाइए, हम रहेंगी कैसे। तो जैसे जैसे इन भक्तों के हृदय से भक्ति की लहर उमड़ती वैसे वैसे वे परिपूर्ण सब प्रकार से प्रेम स्वरूप परमात्मा उन सखी सहेलियों के वश में हो करके आखिर उन्होंने कह ही दिया कि हे सखियो आपने जो किया तो किसी ने नहीं किया। आप इस बात को कि मैं सदा ही आपका हूँ, ये बिल्कुल सच्ची बात है कि आप मैं आपसे मैं विलग नहीं होऊंगा। और मैंने ऐसा सुना है कि उन्होंने वचन दिया और जिन जिन ने उस भाव से उस वचन को ग्रहण किया उन्होंने कभी नहीं ऐसा पाया कि जनकपुरी और रघुनंदन जी हमारे बीच में नहीं है। कहाँ न कहाँ वाटिका में और बिहार में जगह जगह पर उनके दर्शन होते रहते और उनको ऐसा ही लगता कि मैंने रघुवर जी से कहा था कि हमें छोड़कर मत जाना, तो उन्होंने अपना वचन निभाया और नहीं गए। तो आपने जो किया तो किसी ने नहीं किया। बहुत उपकार मांगा, बहुत उपकार मांगा, प्रेमी जनों के प्रेम की बड़ी कृतज्ञता मानी। ऐसी ही चर्चा आपने ब्रज के संबंध सखियों और सखाओं के प्रेम से विमोह हो गए हैं। तो यहाँ तो सभ्यता की भाषा नहीं थी, सुसंस्कृत बात थी नहीं, बेचारे गांव के रहने वाले दोस्त बनाने वाले द्वार बार तो पकड़ पकड़ के गिरा रहे हैं, दादा तेरे संग खेलना, दादा तेरे संग गोद चलाना, दादा तेरे संग घरेलू करना कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है, दादा तो हम लोगों को छोड़कर जाएगा तो नहीं, दादा हम लोगों को छोड़कर कभी हटेगा तो नहीं। तो करते करते उनके प्रेम से विभोर होकर के वचन ले लिया। मैंने ऐसा सुना है कि अनेक सखा और अनेक
मेरे नाथ आप अपनी सुधामयी सर्वसमर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने की सामर्थ्य प्रदान करें। एवं हे करुणा सागर, अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें। सभी का जीवन सेवा त्याग प्रेम से परिपूर्ण हो जाए।